भागवतम दशम स्कंद अध्याय दो और श्लोक संख्या 30। अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। त्वयी अम्बुज अक्ष अखिल सत्वधामनी समाधिना आवेशिता चेतसा एके त्वपाद पोतेन महत्कृतेन। कुर्वन्ति गोवत्सपदं भव अब्धिम् त्वय्यम्बुजा क्षाखिल सत्त्वधाम्नी समाधिनावेशित चेतसैके त्वपादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् त्वय्यम्बुजा शाखिल सत्त्वधाम्नी समाधिनावेशित चेतसैके त्वपादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् त्वय्यम्बुजा शाखिल सत्त्वधाम्नी समाधिनावेशित चेतसैके त्वपादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् त्वयि आप में हो गया एक है अम्बुज अक्ष एक कमल जैसे नेत्र वाले प्रभु अखिल सत्वधामनी जगत के आदि कारण जिससे हर वस्तु अद्भुत होती है उद्भुत होती है और जिसमें समस्त शक्तियां निवास करते हैं समाधिना स्थाई ध्यान तथा पूर्ण तल्लीनता आपके विचारों में द्वारा आवेशित पूर्णतया तल्लीन संलग्न चेतसा चेतना द्वारा एके आपके चरण कमलों के विषय में चिंतन की एक विधि त्वत्पाद पोतेन आपके चरण कमल रूपी नाव में चढ़कर महत्कृतेन ऐसे कार्य द्वारा जो अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है या जो महाजनों द्वारा संपन्न किया जाता है कुर्वन्ति करते हैं गोवत्सपदं बछड़े के खुर के निशान तुल्य बाबा अवधेम संसार सागर को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे कमलनयन प्रभु संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों महान संतों मुनियों तथा भक्तों के चरण चरणों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के खुर के खुर का चिन्ह पार कर रहा हो। तात्पर्य काफी लंबा, इसलिए हमने उच्चारण थोड़ा सा ही किया। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन का असली उद्देश्य बारंबार जन्म मृत्यु के अज्ञान सागर को पार करना है, किंतु अज्ञान के अंधकार में रहने वाले इस उद्देश्य को नहीं जानते। उल्टे वे भौतिक प्रकृति की तरंगों द्वारा बहा लिए जाने के कारण प्रकृति क्रियमाणानी गुणी कर्माणी सर्वशः बारंबार जन्म मृत्यु के कष्टों को झेलते रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमानी, किंतु जिन व्यक्तियों ने भक्तों की संगति से ज्ञान प्राप्त कर लिया है वे महाजनों का महत् कृत्य न अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग अपने चित्त को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करते हैं और नवदा भक्ति में से एक या अधिक को श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम ग्रहण करते हैं। केवल इसी विधि से मनुष्य ज्ञान के दुर्लभ्य संसार को पार कर सकता है। भक्ति चाहे जिस रूप में हो शक्तिशाली होती है। श्री विष्णु हो श्रवणे परीक्षित अभवत वैयास की कीर्तने भक्तिरसामृत सिंधु 1.2.265। इस श्लोक के अनुसार महाराज परीक्षित अपने मन को भगवान के नाम गुण तथा लीलाओं के श्रवण में एकाग्र करने के कारण मुक्त हुए। इसी तरह सुखदेव गोस्वामी भी केवल भगवान के गुणगान से तथा श्री कृष्ण के विषय में प्रवचन करके मुक्त बने, जिससे संपूर्ण श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। कोई भी व्यक्ति भगवान के सख्य भगवान की सखा भाव से भक्ति द्वारा भी मुक्त हो सकता है। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि जैसे कि भगवान के अनेक शुद्ध भक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टांतों से हम सीखते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि कपिलो मनुहु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास अकीर्वयम्। हम ऐसे ही भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि इसे एक सरल विधि से मनुष्य ज्ञान के सागर को उसी तरह पार कर सकता है जिस तरह बछड़े के खुर से उत्पन्न एक छोटे चिन्ह को। यहां पर भगवान को अंबुजाक्ष अर्थात कमल नेत्र कहा गया है। भगवान के कमल जैसे नेत्रों को देखकर मनुष्य इतना संतुष्ट हो जाता है कि वह अन्य किसी वस्तु की ओर अपनी दृष्टि उठाना नहीं चाहता। भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके ही भक्त अपने हृदय में स्थित भगवान में तल्लीन हो जाता है। ये तल्लीनता ही समाधि कहलाती है। ध्याना अवस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः भागवत 12.13.1। योगी भगवान के विचारों में लीन रहता है, क्योंकि उसके हृदय में स्थित भगवान के चिंतन के अतिरिक्त उसके पास और कोई कार्य नहीं रहता। कहा भी गया है, समाशिता ये पद पल्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदीर वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम नतेषाम। जिसने उन भगवान के चरण को चरण कमल रूपी नौका ग्रहण कर ली है, जो संसार के आश्रय हैं और मूर राक्षस के शत्रु मुरारी नाम से विख्यात है, उसी के लिए भव सागर बछड़े के खुर में भरे हुए जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदार्थ पदम परम पदम अर्थात वैकुंठ है, जहां ना तो भौतिक क्लेश है और ना पग पर विपद है। भागवत 10.14.58 ब्रह्मा जी तथा शिव जैसे महाजनों ने स्वयंभू नारद शंभु इस विधि की संस्तुति की है। अतः ज्ञान को लांगने के लिए हमें इस विधि को ग्रहण करना चाहिए। यह अत्यंत सरल है, किंतु हमें महाजनों के पचनों का अनुसरण करना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। बहुत करते हैं शब्द के विषय में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े भक्तों द्वारा दिखलाई गई विधि उन्हीं के लिए नहीं अपितु अन्यों के लिए भी होती है। जो वस्तुओं को इस तरह सरल बनाते हैं उसे न केवल उन्हें ही अपितु उनके अनुसरण करने वालों को भी आसानी होती है। इस श्लोक में अज्ञान सागर को पार करने के लिए जो विधि बतलाई गई है वह न केवल एक भक्त के लिए अपितु भक्त का अनुसरण करने वाले किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी है। महाजनो येन गतः सपन्तः। ओम अज्ञान तीव्र अंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे कमलनयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप आके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों महान संतों मुनियों तथा भक्तों के चरण चरणों का अनुसरण करता है. इस सरल सी विधि से वह ज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के खुर का चिन्ह पार कर रहा हो. तो बहुत सुंदर श्लोक है और ये श्लोक देवताओं के द्वारा बोला गया है. भगवान कृष्ण गर्भस्थ हैं, यानी कि माता देवकी के घर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके हैं और देवतागण जो है स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं. और इन प्रार्थनाओं की विशेषता यह है कि विशेष है ये प्रार्थनाएं और बहुत ही भाव से ये प्रार्थनाएं की गई हैं देवताओं के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति में. जब चैतन्य महापुरुष निमाय भी शची माता के घर में प्रकट हुए थे इसी तरह से देवी देवताओं ने प्रार्थना की थी. हमारे पूरे श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत जो है पूरा प्रार्थनाओं से भरा हुआ है. कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, प्रार्थना ही प्रार्थना है पूरे श्रीमद् भागवत में, तो प्रार्थना ही भरी हुई है. और प्रार्थना किस लिए की जाती है, क्योंकि एक तो ये भक्ति का अंग है वंदनम. और प्रार्थनाओं की विशेषता क्या है, प्रार्थना जब असहाय अवस्था में की जाती है और इस भाव से की जाती है कि हम पूर्ण रूपेण कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं, उनकी कृपा के ऊपर निर्भर हैं, तो ऐसी प्रार्थनाएं जो है वो हृदय से होती हैं. और ऐसी प्रार्थनाओं की सुनवाई भगवान श्री कृष्ण करते हैं. वास्तव में देखा जाए तुम्हारी पहुंच है नहीं भगवान कृष्ण तक, इसलिए हमें गुरु के माध्यम से प्रार्थना करनी चाहिए. तो गुरु के माध्यम से जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण तक पहुंचती हैं, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो गुरु तक ही है. और ये गुरु की कृपा, ये भगवान कृष्ण की कृपा है कि आध्यात्मिक जगत से श्री गुरु आते हैं और उनको ये प्रार्थनाएं जो हम बोलते हैं वो प्रार्थनाएं पहुंचाई जाती हैं कृष्ण तक. गुरु के माध्यम से शिव विग्रह की पूजा होती है, गुरु के माध्यम से जो है प्रार्थनाएं होती हैं, गुरु के माध्यम से हम लोग महामंत्र का जो जप करते हैं वो भी कृष्ण सुनते हैं. तो ये सब गुरु के माध्यम से होता है और गुरु की भी इसलिए वंदना की जाती है. तो ये सब प्रार्थना है. और इस तरह से कई ऐसे भजन लिखे गए प्रार्थनाओं का चरण कमलों के ऊपर, चरण कमलों के लिए प्रार्थना की जा रही. तो प्रार्थना किसके लिए की जा रही है, क्योंकि भगवान का एक ही अंग जो है वो चिन्मय है, वो अपने आप में पूर्ण है. अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मन्ति, तो एक ही अंग जो है दूसरी इंद्रिय का कार्य कर लेता है और वो अपने आप में वो इंद्रियां जो है वो पूर्ण है, कंप्लीट है, मोस्ट कंप्लीट है. इसलिए भगवान के चरणों में और भगवान के मुख में कोई अंतर नहीं. भगवान के चरणों में भगवान के मुख में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है, एब्सोल्यूट है. हमारे चरणों को अगर छूता है तो फिर हाथ धोना पड़ता है, धोना पड़ता है कि नहीं. और बहुत ही अशुद्ध माना जाता है चरणों को छूना, लेकिन भगवान के चरणों को छूना सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि भगवान के जो चरण है वो दिव्य है. जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, నితాయి పద కమల కోటి చంద్ర సుశీతలా జే ఛాయా జగత జుడాయ్ జే ఛాయా జగత జుడాయ్ గౌరంగేర దుటి పదా జారధన సంపదా. तो ये सब जितने भजन है नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे हैं, बहुत सारे भजन लिखे हैं, तो उसमें चरणों की बड़ी विशेषता बताई गई नहीं. और इसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर और जगह लिख रहे हैं, तांदेरा चरण से भी भक्त सनेवास जनमे जनमे होए यही अभिलाष. तो क्या कारण है इतना, शास्त्रों में हर जगह चरण चरण के बारे में बोला जा रहा है, चरण की धूली भक्त पद दूली यार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष यही तीन महाबल. तो वहां भी चरणों की बात की जा रही है. तो हमारे शास्त्रों में हर जगह चरणों के बारे में चर्चा होती है, और तो इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. और एक और वैष्णव भजन में जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, प्रतिजन में कोरी आशा चरणे रथूली. नरोत्तम दास ठाकुर, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सदमा. नरोत्तम दास ठाकुर, चरणों के बारे में कितनी सारी व्याख्या है, हमारे शास्त्रों में चरण चरण ही चरण भरे हुए हैं. भगवान श्री कृष्ण के चरण, वैष्णवों के चरण, भक्तों के चरण, तो ये और चरणामृत का बड़ा महत्व है. तो रोज चरणामृत का पान आप करते हैं, दर्शनार्थी होते ही सबसे पहले क्या आपको मिलता है, चरणामृत मिलता है. और चरणामृत की बड़ी विशेषता है, चरणामृत का एक भी बूंद गिर गया तो बहुत पाप लगता है आपको नहीं. तो चरणामृत का, भगवान के चरणों का अमृत, यानी कि साक्षात गंगा जी कौन है, गंगा जी कौन है, भगवान की चरणामृत है, चरणों से निकली हुई है, वो चरणामृत ही है. उस चरणामृत का पान करते हैं, उस चरणामृत में स्नान करते हैं. गंगा जी जाते हैं ना हरिद्वार लोग स्नान करने के लिए. तो इस तरह से अब हम कुछ इसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे चरणों के बारे में. पहले तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि चरण कमल क्यों, वाई लोटस फीट, इतना महत्व क्यों है इसका. और दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न की चर्चा करेंगे, भगवान के चरणों का आश्रय लेना, टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस फीट. सुना होगा आपने कई बार इस तरह के शब्द ना, भागवत में भी है, भगवान के चरणों का आश्रय लेना. और भगवान के चरणों की प्राप्ति करने की योग्यता क्या है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू अटेन द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट, टू अटेन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. भगवान के चरणों का आश्रय लेने की योग्यता क्या है, कुछ योग्यता होनी चाहिए कि नहीं. और उसके बाद हाउ टू, यानी कि यहां तक कि हमारे गुरु महाराज जी व्यास पूजा होती है तो हर किसी को मिलता नहीं मौका भगवान के गुरुदेव के चरणों को धोने का. तो गुरु के साथ भी ऐसा ही होता है नहीं. और सुबह सुबह हम लोग गाते हैं, क्या गाते हैं, संसार दावा नलली डलोका त्रनाय कारुण्या घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणा नवस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. तो वहां रोज रोज जो है यही गाते हैं हम लोग, सुबह सुबह उठ के हम लोग वंदे गुरो श्री चरणारविंदम कहते हैं. तो चरणों से भरा हुआ है हमारा ये आध्यात्मिक जगत, ये वैष्णव समाज, भगवान के चरणों से, गुरुदेव के चरणों से. तो इस प्रकार ये चरणों की इतनी महत्वता क्यों है, इसको समझने का प्रयास करेंगे. तो भागवत का प्रथम स्कंध है जिसमें सूत गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं. परीक्षित महाराज ने क्या किया, सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज को नहीं, सॉरी, सूत गोस्वामी सौनक ऋषि और अन्य ऋषि जो एकत्र थे नैमिषारण्य में, उनको संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा हो रही है कि परीक्षित महाराज ने क्या किया, उन्होंने अपने राज्य में भ्रमण किया एक समय और देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं. हमारी प्रजा जो है चार नियमों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, कोई नशा तो नहीं कर रहा है, कोई जुआ तो नहीं खेल रहा है, कोई अवैध संबंध तो नहीं रख रहा है, और कोई मांस भक्षण तो नहीं कर रहा है, कोई गो हत्या तो नहीं कर रहा है, गाय की रक्षा हो रही है कि नहीं? और देखा महाराज परीक्षित ने क्या देखा, एक राजा को देखा, राजा के वेश में था लेकिन शूद्र से भी अधम, बिल्कुल काला कली का स्वरूप, और क्या तलवार लेके खड़ा था, और उसने क्या किया, गाय के पांव को मारा। लेकिन परीक्षित महाराज को दंड देना चाह रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने रोक दिया उनको, रुक जाओ, तुम्हारी यह हिम्मत हमारे राज्य में, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम गाय के ऊपर आक्रमण कर सको, यही जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें मैं। नहीं, ये तो नहीं बोला तो परीक्षित महाराज जो है बहुत क्रोधित हुए थे। तो ये सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं सौनक ऋषि, जो कि नैमिषारण्य में एकत्र जो ऋषि मुनि थे, उनको उनके उनका प्रतिनिधि बनकर जो है मुख्य वक्त श्रोता थे, प्रमुख श्रोता सौनक ऋषि थे, और जिज्ञासु थे, जिज्ञासा के उदाहरण है, तो जिज्ञासु थे सौनक ऋषि की, ऐसा क्यों हुआ? परीक्षित महाराज जो है वो उस व्यक्ति को दंड देना चाह रहे थे, तो जिसने जरूरत की कि वो गाय के एक पांव के एक टांग को जो है तोड़ना चाहा। और ये सब आप बताएं, जो कि भगवान, अगर ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो अगर इसका संबंध भगवान कृष्ण है तो आप बताइएगा, क्या बोला उन्हें, तत्कथयता महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम, अगर कृष्ण कथा से संबंधित है तो आप चर्चा करिए, नहीं तो हमें नहीं सुनना। भगवान कृष्ण से संबंधित हो तो आप चर्चा करिए, तो फिर क्या बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा है, अथवास्य पदाम भोज मकरंद लीला लिहाम सताम किम अन्य रसद आलापय आयुषो यद अशद व्ययहा। बोलते हैं कि ऐसे विषयों की चर्चा आप करिए जिसका संबंध जो है भक्तों से है, भगवान के भक्तों से है। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के चरण के जो मकरंद का पान करते हैं, मकरंद जानते हैं, उसको हनी कहते हैं, शहद कहते हैं, मकरंद, वो जो भजन है, एक और भजन है रुशल रूप गोस्वामी का, क्या भजन है वो, बहुत सुंदर भजन है, मन मानस मधु पर अर्पदय निज पद पंकज मकरंदे, बहुत सुंदर भजन है, कृष्ण देव भवंतम वंदे। तो श्रील रूप गोस्वामी यही बोल रहे हैं कि मकरंद की से तुलना की गई है, भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो कमल में मकरंद है, तो मकरंद यानी कि भगवान के जो लीलाएं हैं, भगवान की जो कथा है, कृष्ण कथा है, और उसको जब श्रवण करते हैं तो भक्त क्या करते हैं, भगवान के चरणों का के जो मकरंद है उसका पान करने में वो व्यस्त है, वो हमेशा पान करते हैं। और लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कह रहे हैं, आयुषो यद असद भवेहा, वो बोलते हैं फिर ऐसे विषयों की चर्चा करने का क्या लाभ, अगर कृष्ण कथा से कृष्ण संबंधित नहीं है, वो ऐसे जो तथाकथित कथाएं हैं वो व्यर्थ है, यूजलेस टॉपिक्स, तदवाय सम तीर्थम उशंति मानसहा। तो ऐसा स्थान जहां पर कृष्ण कथा नहीं होती है, वहां पर वो स्थान तो कौओं का तीर्थ स्थान है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर क्रोस। आप तो हंस समाज के हैं, आप सब हंस हैं, परमहंस नहीं तो हंस बन जाएं कम से कम, परमहंस बनना आसान नहीं, लेकिन हंस भी बन गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, और हंस बनने की आप सब तैयारी कर चुके हैं, इसलिए आज आप यहां विराजमान हैं, तो आप भी मकरंद का पान कर सकते हैं कृष्ण कथा श्रवण करके, भगवान के चरण कमलों का मकरंद का पान करने के लिए आप लोग राधिका रमन जी के मंदिर में आए हैं। मिला मकरंद अब तक कि नहीं? नहीं। तो मकरंद का पान करने के लिए आपको चाटना नहीं पड़ेगा चम्मच लेके, लेकिन कर्ण के द्वारा ये मकरंद का पान होगा, ये मकरंद का पान जो है कर्ण से प्रवेश करेगा, ನೈ ಹಿರ್ತ್ಕರ್ಣ ರಸಾಯನ ಕಥಾ. ಈ ಹಿರ್ತ್ಕರ್ಣ ರಸಾಯನ ಕಥಾ, ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿದೋ ಭವಂತಿ ಹಿರ್ತ್ಕರ್ಣ ರಸಾಯನ ಕಥಾ. ತೋ ಹಿರ್ತ್ಕರ್ಣ ಯಾನಿ ಕಿ ಕರ್ಣ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹೃದಯ ಪ್ರವೇಶ ಕರೆಗಾ ಔರ್ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಬಡ ರಸಾಯನ ಹೈ. ರಸಾಯನ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ಟಾನಿಕ್. ಔರ್ ರಸಾಯನ ಲೇತೆ ಹಿ ಆಪ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಐಸಿ ಊರ್ಜಾ ಆಯೇಗಿ, ಐಸಿ ಶಕ್ತಿ ಆಯೇಗಿ, ಆಪ್ ಭಾಗೆಂಗೆ ದೌಡೆಂಗೆ ಘೋಡೆ ಕಿ ತರಹ, ಘೋಡೆ ಸೆ ಭಿ ತೇಜ್. ತೋ ಊರ್ಜಾ, ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಊರ್ಜಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಿ ಹೈ. ಔರ್ ಅಬ್ ಯೇ ಪ್ರಶ್ನ ಉಠತಾ ಹೈ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಮಝಾ ರಹೆ ಹೈ. ಯೇ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಪಹಲಾ ಸ್ಕಂದ ಹೈ, 16ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಔರ್ 6ಠೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಮಝಾ ರಹೆ ಹೈ. ಕ್ಯಾ ಸಮಝಾ ರಹೆ ಹೈ? ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಮಝಾ ರಹೆ ಹೈ ಕಿ ಐಸಾ ಕ್ಯೂ ಹೋತಾ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಚರಣೋ ಕಿ ತುಲನಾ ಕಮಲ್ ಸೆ ಕಿ ಜಾತಿ ಹೈ ಹಮೇಶಾ. ತೋ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬತಾ ರಹೆ ಹೈ ಕಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಯಾನಿ ಗೋಲೋಕ್ ವೃಂದಾವನ್ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಕಮಲ್ ಸದೃಶ್ ಹೈ. ಔರ್ ಉಸ್ ಕಮಲ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಜೋ ಕರ್ಣಿಕಾರ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಕರ್ಣಿಕಾರ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ವೋಲ್. ವೋಲ್ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಆಪ್ ಕಮಲ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಯಾ ಫೂಲ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಏಕ್ ಪೀಲೆ ರಂಗ್ ಕಾ ದೇಖಾ ಅಪ್ನೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹೋತಾ ಹೈ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾ, ಉಸ್ಕೋ ಕರ್ಣಿಕಾರ್ ಕಹತೆ ಹೈ, ವೋಲ್ ಕಹತೆ ಹೈ. ತೋ ವಹಾಂ ಪೆ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಹೈ ಗೋಲೋಕ್ ವೃಂದಾವನ್ ಮೇ, ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಚರಣ ಹಮೇಶಾ ಉಸ್ಮೇ ರಹತೆ ಹೈ, ಉಸ್ ಕರ್ಣಿಕಾರ್ ಮೇ ಯಾನಿ ಕಮಲ್ ಮೇ ರಹತೆ ಹೈ. ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಬ್ ಪ್ರಕಟ ಹೋತೆ ಹೈ ಇಸ್ ಧರಾಧಾಮ್ ಮೇ, ಇಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇ, ಇಸ್ ಭೂತಲ್ ಮೇ ಜಬ್ ಪ್ರಕಟ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಗೋಲೋಕ್ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ್ ಕೋ, ಬ್ರಜ ಗೋಕುಲ್ ಜೋ 84 ಕೋಶ ಕಾ ಹೈ, ತೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾಮ್ ಪ್ರಕಟ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ವೋ ಕಮಲ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಪ್ರಕಟ ಹೋತೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್. ವೋ ಜೋ ಕಮಲ್ ಹೈ ಜಿಸ್ ಕಮಲ್ ಕೆ ಕರ್ಣಿಕಾರ್ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಚರಣ ಹೈ, ಉಸ್ ಕಮಲ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜೋ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಟ ಹೋತೆ ಹೈ ಇಸ್ ಭೂತಲ್ ಮೇ, ಇಸ್ ಬ್ರಜ ಕೋ ಪ್ರಕಟ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಯಾನಿ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಗ್ ನಹೀ ಹೋತೆ ಉಸ್ ಕಮಲ್ ಸೆ. ವೋ ಕಮಲ್ ಹಮೇಶಾ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಹೀ ರಹತಿ ಹೈ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಸ್ ತರಹ ಸಮಝಾ ರಹೆ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಇಸ್ ಕಾರಣ ಸೆ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾ ಉತ್ತರ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್, ಲೋಟಸ್ ಸೆ ಕ್ಯೂ ತುಲನಾ ಕೆ ಗಯೀ ಹೈ ಸಿರ್ಫ್. ಔರ್ ಭಿ ತೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೈ, ಮಾಲತಿ ಹೈ ಔರ್ ಮೋಗ್ರಾ ಜಿಸ್ಕೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಔರ್ ಕೈ ಸಾರೇ ರಜನಿಗಂಧಾ ಹೈ, ಗುಲಾಬ್ ಕಾ ಫೂಲ್ ಹೈ ಔರ್ ಕಮಲ್ ಸೆ ಮಿಲ್ತಾ ಜುಲ್ತಾ ಏಕ್ ಫೂಲ್ ಲಿಲಿ ಹೈ, ಲಿಲಿ ಕಹತೆ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ. ಲಿಲಿ ತೋ ಬಹುತ್ ಮಿಲ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪೆ, ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ಕೋ ಖುಷ್ಬು ನಹೀ ಆತಿ, ಲೇಕಿನ್ ಕಮಲ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಖುಷ್ಬು ಹೋತಿ ಹೈ. ಔರ್ ಯೇ ಜೋ ಕಮಲ್ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಲೋಕ್ ಧಾಮ್ ಮೇ ಜಬ್ ಹೈ, ತೋ ಗೋಲೋಕ್ ಧಾಮ್ ವೋ ಕಮಲ್ ಕೆ ಸಹಸ್ರ ದಲ್ ಕಮಲ್, ಔರ್ ಉಸ್ ಕಮಲ್ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಹೈ, ಉನ್ಕೆ ಚರಣೋ ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೀಚೆ. ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತೋ ಇಸ್ ತರಹ ಸೆ ಕೈ ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೈ. ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬೋಲ್ ರಹೀ ಹೈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಕೆ 8ವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ಮೇ. ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೋ ಚಿಂತಾ ಹೋ ಗಯಿ, ಅಗರ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಉನ್ಕೆ ಚರಣೋ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಿ ಹೂ, ತೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಅಚ್ಛಾ ನಹೀ ಲಗೇಗಾ. ಕ್ಯೋ ಕ್ಯೋ ಅಚ್ಛಾ ನಹೀ ಲಗೇಗಾ? ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉನ್ಕಿ ಬುವಾ ಹೈ, ಔರ್ ಬುವಾ ಅಗರ್ ವೋ ದಂಡವತ್ ಕರೇ ಪ್ರಣಾಮ ಕರೇ ತೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೈ ಅಚ್ಛಾ ನಹೀ ಲಗೇಗಾ. ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಹುತ್ ಚತುರ ಹೈ. ತೋ ಪ್ರಭುಪಾದಿ ಬತಾ ರಹೇ ಕಿ ಪ್ರಭು ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಇತನಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೈ ಬೋಲ್ನೆ ಮೇ, ಯೇ ವಾಕ್ ಪಟುತಾ ಜೋ ಹೈ ಭಕ್ತೋ ಮೇ ಪಾಯಿ ಜಾತಿ ಹೈ. ಔರ್ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಯಾ ಕರಿಯೆ, ನಮೋ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನೆ ನಮಃ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರೇ. ಪಂಕಜಾಂಗ್ರೇ ಸಬ್ಸೆ ನೀಚೆ, ಸಬ್ಸೆ ನೀಚೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಚರಣ ಹೈ, ಚರಣೋ ಸೇ ಶುರುವಾತ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಲೇಕಿನ್ ಶುರುವಾತ್ ಕಹಾನ್ ಸೇ ಕಿಯಾ ಉನ್ಹೋನೆ? ನಾಭಿ ಸೇ ಕಿಯಾ. ನಾಭಿ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ಕೋಯಿ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ಐಸಾ ಕುಛ್ ಹೋತಾ ಹೈ? ನಮೋ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ. ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ ಚರಣ ಬೋಲ್ ದೇಂಗೆ ತೋ ಫಿರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಅಚ್ಛಾ ನಹೀ ಲಗೇಗಾ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಉನ್ಹೋನೆ ನಾಭಿ ಸೇ ಶುರುವಾತ್ ಕಿ, ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮಾಲಾ ಕಿ ತರಫ್ ಗಯಿ, ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನ್ ಹೈ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ನೇತ್ರೋ ಕಿ ತರಫ್ ಗಯಿ, ನಮಃ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ ಆಯ. ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಫಿರ್ ನೀಚೆ ಆ ಗಯಿ ವಾಪಸ್, ನಮಃ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರೇ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರೇ. ತೋ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಿತನಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೈ ಸೋಚ್ ಕೆ ದೇಖಿಯೆ ಆಪ್. ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಇತನಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೈ ಕಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೋ ಹೈ ಚರಣೋ ಕೋ ನಹೀ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಿಯಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಅಚ್ಛಾ ನಹೀ ಲಗೇಗಾ. ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಬ್ ಕುಛ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ನಾ, ಸಬ್ ಕುಛ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೇ ಬಹುತ್ ಹೀ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಬಾತ್ ಯಹಾಂ ಬತಾಯಿ ಗಯಿ ಹೈ. ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಬಹುತ್ ಏಕ್ ಔರ್ ಸುಂದರ ಬಾತ್ ಬತಾಯಿ ಗಯಿ ಹೈ ಕಿ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಭೂರಿಜನ್ ಪ್ರಭು ಬತಾ ರಹೆ ಥೆ, ಭೂರಿಜನ್ ಪ್ರಭು ಬತಾ ರಹೆ ಥೆ ಕಿ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ತುಲನಾ ಕೈ ಬಾರ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ ಚಾಂದ್ ಸೆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಬೋಲಾ ಗಯಾ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕೋ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಏಕ್ ನಾಮ ಹೈ ಚಂದ್ರಮುಖಿ, ವೃಂದಾವನ್ ಚಂದ್ರ ಹೈ ಕೆ ನಹೀ? श्याम चंद्र, वृंदावन चंद्र, तो ये सब चंद्रमा से तुलना की गई है, तो क्या चंद्रमा जितने ही सुंदर है कृष्ण क्या, ये प्रश्न उठता है, या कमल जितने ही सुंदर है कि कमल से तुलना की गई। अच्छा कमल को देख लिया, इसका मतलब कृष्ण को देख लिया है, चंद्रमा को देख लिया। लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नवदीप में भी दो चंद्र, चंद्र और जो है सूर्य प्रकट हुए हैं, सन एंड मून, और वो है मायापुर चंद्र। प्रभुपाद ने नाम दिया था, चैतन्य महाप्रभु का नाम एक दिया था प्रभुपाल ने, मायापुर चंद्र। प्रभुपाल ने कहा ये नाम आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा, ये नाम मैंने दिया है चैतन्य महाप्रभु को, शिल प्रभुपाद ने नाम दिया मायापुर चंद्रोदय मंदिर, और मायापुर चंद्र बोला उन्होंने, मून ऑफ मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु, तो मून ही है केवल नहीं। ईस्टर्न होराइजन में जैसे कि सनराइज होता है, इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नवदीप के, नवदीप में प्रकट हुए श्री धाम मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये चंद्रमा से तुलना की जा रही है, भगवान के जो चरणों से तुलना की जा रही है, तो भाई उतने ही सुंदर है। यानी कि आपने अगर चंद्रमा को देख लिया पूर्णिमा के चांद्र को, तो गौर ये हो गया, बस महाप्रभु को देख लिया आपने, गौर चंद्र को देख लिया, गौर चंद्र भी नाम है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, वो सारे गुरुजन प्रभु बता रहे थे कि जब गोलोक वृंदावन आप जाएंगे, जब आपको स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और प्रत्यक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे, तो आप सोचेंगे अरे तो मैं तो कितना मूर्ख था यार, मैं ठीक से समझ नहीं पाया शास्त्रों की बातों को, कि चंद्रमा से तुलना की जा रही है, कमल से तुलना की जाती है, भगवान कृष्ण को देखकर क्या ऐसा लगता है कि चंद्रमा कहीं आसपास भी है? अरे ये तो ऐसे चंद्रमा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जिसमें किसी तरह का दाग है ही नहीं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, तो इसी तरह से कोटि चंद्र सुशीतला निताई पद कमला, कोटि चंद्र सुशीतला, कोटि चंद्र लाखों करोड़ों चंद्रमा की जो ठंडक होनी चाहिए, जो होती है वो ठंडक आपको नित्यानंद प्रभु के चरणों में मिलेगी, तो बस हो गया, बस वो तुलना से वो पर्याप्त नहीं है। वो तुलना कहने का मतलब यह है कि इतनी इस प्रकार की तुलना करना जो है वो निरर्थक होगा, बस ये समझने के लिए है कि कुछ हद तक हम लोग समझ सके। भौतिक जगत में रह रहे ना हम लोग, भौतिक जगत के वस्तुओं को ही देखते हैं हम लोग, इसलिए कई बार भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण उदाहरण देते हैं ताकि हम लोग समझ सके। एक बार किसी ने पूछा था हमसे, हमसे पूछा कि प्रभु जी एक बात बताइए, आप जब प्रचार करते हैं हमेशा भौतिक उदाहरण देते हैं, तो भौतिक उदाहरण आप एग्जाम्पल्स देते हैं आध्यात्मिक जगत की बातों को समझाने के लिए, ये कहां तक ठीक है? जैसे प्रभुपाद कुछ भी समझाने के लिए एकदम से एग्जाम्पल देते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं और सामने वाला एकदम स्तब्ध हो जाता है, चुप हो जाता है। लेकिन कुछ समझदार जीव भी है, वो बोलते कि आप भौतिक उदाहरण क्यों देते हो आध्यात्मिक जगत का वर्णन करने के लिए, आध्यात्मिक बातों को समझाने के लिए, क्या कंपैरिजन है बताइए इसका उसका। तो इसका सिंपल सा उत्तर है, सिंपल सा उत्तर है, क्योंकि हमें अभी हम आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है, इसलिए भौतिक उदाहरण दिए जा रहे हैं। जब हम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाएंगे तो भौतिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, और आपको भौतिक उदाहरण नहीं देंगे तो आप भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को क्या समझोगे, साधारण समझोगे, नहीं समझ पाओगे, इसलिए क्योंकि दिमाग में कूड़ा करकट भरा हुआ है, इस क्या कहते हैं उसको, भ्रष्ट बुद्धि के द्वारा हम नहीं समझ पाते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं को, इसलिए उसको समझने के लिए हमें भौतिक उदाहरण का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अब ये मटेरियल प्लेटफॉर्म है, भौतिक धरातल पर है, इसलिए भौतिक उदाहरण से ही समझा जा सकता, और कोई तरीका नहीं है समझने का। या तो फिर आपकी अटूट श्रद्धा हो कि बस सुनने मात्र से आप समझ जाओ, स्वीकार कर लो कि बात सही, लेकिन हमारा बड़ा कैलकुलेटिव दिमाग है, एनालिटिकल दिमाग है, रीजनिंग बहुत किया हमने, लॉजिक्स पे कह रहे हैं हम लोग, जीवन भर यही करते रहे, पढ़ते लिखते रहे स्कूल्स में कॉलेजेस में, और यहां आकर भी जो है वही दिमाग लगाते हैं कृष्ण को समझने के लिए, इसलिए कि एनालिसिस करते रहते हैं कृष्ण का, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। अरे भैया ये कोई एलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं है, यहां पे श्रद्धा की आवश्यकता है, श्रद्धा होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करो, और क्या कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाल कहते हैं कि सुनने वाला जो है वो श्रेष्ठ बुद्धि का है, केवल जो सुनकर समझ जाए, और नहीं समझता है सुनकर तो फिर उसको दिखा के समझाना पड़ता है, तो दिखा के समझना ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है। आजकल पीपीटी का जमाना है, बिना दिखाए कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता, कोई लेक्चर नहीं होता। अगर आप प्रेजेंटेशन के साथ आप सेमिनार नहीं प्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत ही पिछड़ा और बैकवर्ड माना जाएगा। अरे ये तो बड़े ट्रेडिशनल साधु हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई, कुछ दिखा नहीं रहे ये। दिखाते किसको है? शूद्रों को, बुरा मत मानेगा। सेंस परसेप्शन इज फॉर द शूद्रास। अब कड़वी बात तो सिर्फ भागवत के प्रवचन में ही हो सकती है, और अगर देखने से ही सबको अगर विश्वास हो रहा है तो दिखा दो, कम से कम कहीं तो विश्वास होगा। परीक्षित महाराज की तरह तो है नहीं कि सुनने मात्र से बस आ हा हा कर रहे हैं, नहीं। यहां तो देख के भी पश्चन अपी ना पश्चंती, आपने पीपीटी में दिखा दिया तो क्या विश्वास कर लिया सबने? किसी ने विश्वास नहीं किया, फिर भी नहीं, बहुत कम लोगों ने विश्वास किया दिखाने के बावजूद भी। तो इसलिए यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि यहां पर कि जब हम भगवान कृष्ण को देखेंगे, गोलोक वृंदावन धाम में जब जाएंगे, भगवान कृष्ण के लीला में प्रवेश करेंगे, भगवान के सौंदर्य को देखेंगे, उनकी सुंदरता को देखेंगे, फिर आप भूल जाएंगे चंद्रमा को और कमल को, क्योंकि हमने देखा नहीं ना भगवान की सुंदरता को, देखा नहीं, सुन रहे हैं बस। अभी तो सुनकर आकर्षण जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वास्तव अनुभव नहीं किया उनकी सुंदरता को। अगर आपने एक बार कृष्ण के सौंदर्य का अनुभव कर लिया तो फिर संसार में कुछ देखने लायक रहेगा नहीं, सब बेकार रहेगा। आप त्यक्त्वा तुम शेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छ भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाश्रित गोपी भावर साम्रताब दलहरी कल्लौल मग्नौ मोहर वंदे रूप सनातनौ रघु युगौ श्री जीव गोपाल कौ। तो इस प्रकार अफ्रीका में एक बार प्रभुपाद गए थे, तो वहां पे अफ्रीकन्स बैठे थे, तो वो देखकर बड़े खुश हुए कि कृष्ण भी काले हैं। प्रभुपाद ने कहा कृष्णा इज ऑल्सो ब्लैकिश, तो लोग बड़े खुश हुए। प्रभुपाद ने कहा तो खुश हो रहे, प्रभुपाल ने कहा कि नहीं, कि आपके जैसे काले नहीं है। अब से वो भी काले हैं, मैं भी काला हूं, सो वी आर सेम, नहीं, सो हम। कृष्णा इज ऑल्सो अफ्रीकन, आप सोचेंगे फिर कृष्णा नॉट अफ्रीकन, काले जरूर हैं लेकिन उनका जो कालापन है, उनका जो श्याम वर्ण है, वो सबको आकर्षित करता है। तो इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन था कि भगवान के चरणों का आश्रय लेना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया है श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति रसाम सिंधु में कि जब हम भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनके चरणों से दर्शन करते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? भगवान के चरणों का दर्शन करके उस चरणों का स्मरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का विग्रह का दर्शन करने के बाद अगर उस कृष्ण के विग्रह का भी अगर हम चिंतन करते हैं, वो स्मरण है, दैट इज ऑल्सो भक्ति। आज कौन सा वस्त्र पहना भगवान ने, आज कौन से गहने पहने हैं, कौन सी पगड़ी बनाई गई, पगड़ी में भी फूल है या नहीं, एक एक डिटेल में दर्शन करें भगवान का। लेकिन यह दर्शन जो है इतना आसान नहीं है भगवान का। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप उन्नत नहीं होंगे कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना में, तो बहुत अधिक समय आप भगवान के सामने नहीं खड़े हो सकते। इट इज नॉट सो ईजी टू मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड, टू स्टैंड बिफोर द डीटीज ऑफ द लॉर्ड, अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांस नहीं, बहुत समय तक ना आप नहीं खड़े हो पाएंगे कृष्ण के सामने। तो कृष्ण के सामने खड़े होने का मतलब क्या है? बिल्कुल फोकस भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाना। तो कई तरह के ध्यान, स्मरण होता है, ध्यान होता है, और इस प्रकार ध्यान लगाया जाता है लंबे समय तक, लंबे अभी तक भगवान के रूप का ध्यान, रूप गोस्वामी बता रहे, गुणों का ध्यान, भगवान की लीलाओं का ध्यान, रूप ध्यानम, गुण ध्यानम, लीला ध्यानम, तो ये सब ध्यान है। और इसीलिए ये शास्त्रों में बड़ा अच्छा बताया, भक्ति रसाम सिंधु में पढ़ेंगे गुण ध्यानम, 64 प्रकार के गुण, भगवान के रूप का ध्यानम, भगवान की लीलाओं का ध्यान लगाना, राइट, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस जिसको कहते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? निरंतर ध्यान लगा, निरंतर स्मरण करना भगवान का। तो इस प्रकार ऐसा करना ही भगवान के चरणों का आश्रय लेना हुआ, राइट। और इससे क्या होता है, अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय लेने से क्या होता है, जितने भी कलमश हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हर प्रकार के कलमशों से हमें छुटकारा मिलता है। अब ये श्लोक बड़ा अच्छा यहां पर दिया, भागवत का श्लोक उदित किया ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है भागवत में, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवामुदीर वत्स पदम परम पदम 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 विपदम न तेषाम। बड़ा सुंदर बताया यहां पर, जिसने भगवान श्री कृष्ण यानी मुरारी की चरणों का आश्रय ले लिया है, समाश्रित मतलब सम्यक रूप से जिसने आश्रय ले लिया है भगवान के चरणों का, तो जानते हैं क्या होता है उसके लिए जो भवसागर है वो वत्स के, गाय नहीं बछड़ा, वत्स के खुर में समाये हुए जल के समान हो जाता है। और जिसने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया है उसके लिए क्या होता है, वत्स के खुर में समाया हुआ जो जल है वो भव सागर के समान हो जाता है। यानी थोड़ी भी समस्या जो होती है संसार की वो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जिसने भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है उसके लिए क्या, भव सागर भी क्या हो जाता है, वत्स पदम यानी कि वत्स के खुर में समाये हुए जल के समान हो जाता है। कितना होगा, 50 ग्राम होगा, 50 ग्राम, 50 ग्राम जितना लगेगा आपको भव सागर का दुख, भव सागर का कष्ट केवल 50 ग्राम हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप उसको पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहां पे बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और फिर आगे क्या बताया गया है, एक बहुत सुंदर बात बताई गई है जिसमें इस भागवत के प्रथम स्कंध के 16वें अध्याय में, जहां पे जो पृथ्वी है जो गाय के रूप में है वो बहुत दुखी हो रही है और उनको बड़ा विरह हो रहा है भगवान कृष्ण से, तो धर्म जो बैल के रूप में है उसे प्रश्न किया, आपको इतना विरह क्यों हो रहा है, आप इतनी दुखी क्यों लग रही है। तो फिर वो गाय के रूप में पृथ्वी माता जो है बता रही है, वो क्या बता रही है, ये श्लोक बड़ा सुंदर है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवी देवता ये सब वास्तव में कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे हैं, ये कृष्ण की कृपा के लिए कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे हैं, ये लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं और फिर कृष्ण की आराधना भी करते हैं, लक्ष्मी जी की आराधना। और वो लक्ष्मी जी जानते हैं क्या है, लक्ष्मी जी जो ऐसे वन में रहती हैं जहां पर चारों तरफ कमल ही कमल है, ऐसे वन को छोड़कर लक्ष्मी जी जो है उन्होंने क्या किया, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है। और ब्रह्मा जी और देवी देवता जो क्या कर रहे हैं, वो लक्ष्मी जी का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं, वो तो वन को छोड़कर यानी कमल वन को छोड़कर भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले रही है। कितनी बड़ी बात है देखिए। और ये भगवान कृष्ण के चरण क्या है, इसमें नाना प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं, ब्रजमंडल जो है भरा हुआ है भगवान के चरणों के चिन्हों से। इसलिए अक्रूर भी जब जब गए वृंदावन में प्रवेश किए और रथ बैठे वो आए थे, लेकिन जहां जहां भगवान के चरणों के चिन्हों को देखा उन्होंने कूद पड़े रथ से और साष्टांग दंडवत किया उन्होंने उन चरण चिन्हों को देखकर, चरण चिन्हों को देखकर एकदम से कूद पड़े अक्रूर जी। तो चरण चिन्हों का इतना महत्व है। तो इसमें कई प्रकार के चिन्ह होते हैं और इसमें बताया गया कि बाएं पांव में भगवान के जो बाएं चरणों में 8 चिन्ह हैं और भगवान के दाएं चरण में 11 चिन्ह हैं। जैसे कि कुछ चिन्हों का बता रहे हैं आपको, अंकुश को हाथी को चलाने के लिए जो महोत होता है वो हाथी के ऊपर बैठता है, उसके हाथ में अंकुश होता है और उससे वो सर पे मारता है तो हाथी को बड़ा दर्द होता है, हाथी का ये पार्ट जो है वो बड़ा वीक होता है थोड़ा, तो वहां पर जब उसको चुभोता है तो हाथी फिर तेज चलने लगता है, तो हाथी धीरे धीरे चलेगा, वो हाथी की चाल तो बहुत स्लो होती है ना, तो उसको तेज भगाने के लिए उसको ऊपर ऊपर ऐसे मारा जाता है, उसको अंकुश कहते हैं। और भगवान के चरणों में छतरी का भी चिन्ह है, वज्र का भी चिन्ह है, कमल का भी चिन्ह है, इस तरह से कई सारे चिन्ह हैं। तो कह रहे कि जब भगवान कृष्ण जब चल रहे थे, जब इस भूतल में थे, ब्रज में थे, मथुरा में थे, द्वारका में थे, जहां जब भगवान के चरण पड़े तो पृथ्वी देव जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही है कि भगवान के स्वरूप में, भगवान के दिव्य स्वरूप में अगर सबसे सुंदर आभूषण कोई है तो उनके वो चरण चिन्ह है। और चरण चिन्ह वो जब पृथ्वी में पड़ते हैं, पृथ्वी देवी कह रही है गाय के रूप में, जब मेरे ऊपर वो सारे चरण चिन्ह पड़े तो मैं सुशोभित हो गई, मैं भी सुशोभित हो गई, क्योंकि भगवान कृष्ण के शरीर में सबसे सुंदर आभूषण क्या है, उनके चरण चिन्ह। और वो चरण चिन्ह जब मेरे सर पे पड़े, मेरे शरीर पे पड़े, तो मेरा शरीर भी जो है वो सुशोभित हो गया उन चरण चिन्हों से। मैं कितने भाग्यशाली थी। लेकिन आज बड़ी दुख की बात, अब भगवान कृष्ण जो है अप्रकट हो चुके हैं, इस पृथ्वी लोक को छोड़कर चले गए, भगवान अपने धाम में चले गए। क्योंकि कहीं ना कहीं तो चरणों का चिन्ह मिल ही जाता था मुझे, नहीं ब्रज को छोड़ा तो मथुरा में मिल गया, मथुरा को छोड़ा तो द्वारका में मिल गया, तो कहीं ना कहीं चरण चिन्ह मिल ही रहे थे पृथ्वी देवी को गाय के रूप में। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जब से वो भगवान अपने धाम में चले गए हैं, अब वो चरणों का आश्रय नहीं मिल पा रहा मुझे। इस कारण से जो है वो पृथ्वी जो गाय के रूप में बहुत दुखी हो रही है, बहुत विरह महसूस कर रही है, और उनकी आंखों से जो है आंसू बह रहे हैं, बहुत तेजी से आंसू बह रहे हैं। तो इस प्रकार और प्रभुपद वहां तात्पर्य में कह रहे हैं, अगर हम लोग निरंतर हरि नाम लेते रहेंगे तो हम भगवान के चरणों का आश्रय ले पाएंगे, उनके चरणों को छू पाएंगे। अगर हम भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसी तरह से जो है चार कुमार भी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः सविवरेण चकार तेषां संक्षोभ अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो। तो चार कुमार ये निर्विशेषवादी थे, निर्विशेषवाद से इनकी आसक्ति थी, लेकिन जब वैकुंठ की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो क्या हुआ, उन्होंने क्या सूंघा, उन्होंने उनकी नासिका से प्रवेश किया भगवान के चरणों में जो अर्पित जो तुलसी है, वो तुलसी की गंध जो है वो कुमारों के नासिका में प्रवेश कर गई, और उस कारण से क्या हुआ, भगवान के स्वरूप से आकर्षित हो गए, और भगवान के चरणों से आकर्षित हो गए और भगवान के स्वरूप से आकर्षित हो गए, इसका मतलब ये है। तो चार कुमारों की भक्ति भी प्रारंभ कहां से हुई, शुक्ति भक्ति कहां से प्रारंभ हुई, भगवान के चरणों से प्रारंभ हुई। तो भगवान के चरणों से वो आकर्षित हो गए, यानी कि चरणों से अर्पित जो तुलसी है उस गंध से आकर्षित हो गए, और एक तरह से वो निर्विशेषवाद उनके हृदय में जो था वो समाप्त हो गया। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमें ये हमेशा भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। इसका अर्थ ये भी है कि एक विनम्रता का प्रतीक है, भगवान के चरणों का आश्रय लेने का मतलब यह है कि अपने आप को तुच्छ मानना, अपने आप को बहुत नीच मानना, कि हम इस लायक ही हैं कि भगवान के चरणों में आकर हम लोग गिरे, हम भगवान के मुखारविंद का दर्शन करने लायक नहीं है। हालांकि भगवान के मुख में और चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भाव ये व्यक्त होता है, भाव ये व्यक्त होता है। जैसे कि माता यशोदा दामोदर लीला में देखते हैं, उस समय क्या कर रही हैं, माता यशोदा जो है वो दही का दही मथ रही हैं। दामोदर लीला में सुना होगा आपने, तो उसमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्य विश्वनाथ जी ठाकुर श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर टीका लिखा है सनातन गोस्वामी ने, वो लिखते हैं कि माता यशोदा जब दही मथ रही थी तो प्रत्येक जो आभूषण थे और पुष्प थे वो सब चिंतन कर रहे हैं। पुष्प माता यशोदा के केश में थे, और माता यशोदा के केश में रहते हुए जब माता यशोदा दही मथ रही थी तो वो फूल आपस में चर्चा कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं अरे हम तो सर में चढ़ के बैठे हुए माता यशोदा के, हमारा स्थान तो माता यशोदा के चरणों में होना चाहिए। तो क्या किया, माता यशोदा के चरणों में आके गिर गए वो सारे फूल, कि हम तो सर पे चढ़ के बैठ गए। माता यशोदा के भाव देखिए, उनका कितना सुंदर भाव है, और इस तरह से अलग अलग भाव है। वो कुंडलों का भाव क्या है, जो कुंडल है लसत कुंडलम, वो कुंडल जो है उनका भाव क्या था, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, माता यशोदा गीत गा रही हैं, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही हैं, और हमें निरंतर मौका मिल रहा है कि हम भी सुन पा रहे हैं। तो कुंडल उनका सौभाग्य ये था, वो उनका भाव ये था। तो हर वक्त का अपना अपना भाव है। तो इस तरह से यहां पर जो है ये भाव ये है कि हम लोग अपने आप को अपनी विनम्रता इस भाव से प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, हमेशा चरणों में रखे। जैसे अब यही तो भगवान के चरणों की बात की गई है, अब भक्तों के चरणों की बात उसकी भी कोई चर्चा कर ले। तो ये वो जो फेस्टिवल हुआ था बॉम्बे में क्रॉस मैदान में, जहां पे बहुत सारे वैष्णव जुड़े, इस्कॉन से भक्त लोग जुड़े, हिसोलेन लोकनाथ स्वामी महाराज, हिसोलेन राधानाथ स्वामी महाराज, इसी पंडाल प्रोग्राम से शुरू है। कई बार लोग सोचते पंडाल प्रोग्राम से क्या फायदा है, कुछ कॉन्क्रीट करिए कंस्ट्रक्टिव, लेकिन ये दोनों महाराज जो है पंडाल प्रोग्राम से जुड़े हैं। कौन कहां जुड़ सकता है आप नहीं जानते हैं, कृष्ण जानते हैं। नहीं, इसलिए कोई भी प्रोग्राम बंद मत करिए, सब चलने दीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुड़ेगा। तो इस लिहाज से क्या होता है, वो पंडाल में फिर क्या हुआ, प्रभुपाद प्रवचन देने के लिए पंडाल में प्रवेश कर रहे थे तो एक अमेरिकन व्यक्ति जो हिप्पी जैसा लग रहा था देखने में, प्रभुपाद जी जैसे प्रवेश किए, उसने क्या किया था, उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को उस पुस्तक चाहिए था और बुक टेबल में पहुंचा था, तो उसके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारे पास, हम फ्री नहीं दे सकते आप। तो उन्होंने क्या किया, भीख मांग कर जो है फिर वो पुस्तक को खरीदा, कृष्णा बुक, पैसा इकट्ठा करके वहीं से लोकली। और उसके बाद फिर जब प्रभुपाद जी का प्रवचन हुआ तो प्रभुपाद जी को देखकर बहुत प्रेरणा उनको मिली, एक शब्द देकर, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। प्रभुपाद जी का दर्शन करने मात्र से जो है कई ऐसे लोग भक्त बन गए, केवल देखने मात्र से खींच गए, प्रभुपाद जी को देखने से भक्त बनने लग गए। तो प्रभुपाद जी पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं और भीड़ है, और भीड़ के बीच में गैप बना हुआ ताकि प्रभुपाद चल सके वहां से, और ये व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने क्या किया, प्रभुपाद जी के चरण छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाए। तो बास में उनके सर्वेंट सेक्रेटरीज होते हैं, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े थे वो भी बिल्कुल अमेरिकन, से उन्होंने रोक लिया, स्टॉप इट, यू कैन नॉट टच। तो वो बेचारे घबरा गए, तो प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने देखा उनकी तरफ, प्रभुपाद ने कहा लेट हिम टच, ही कैन टच, प्रभुपाद ने ऐसे कुछ बोला। और प्रभुपाद ने फिर क्या किया, उनको पंडाल में बुला लिया, भीड़ के बीच में से उनको उठा के कहा मेरे साथ आके बैठ जाओ, व्यास आसन के साथ नीचे बिठा लिया प्रभुपाद ने उनको पूरे प्रवचन में। और जानते हैं वो फिर कृष्णा बुक उन्होंने लिया था, उनको बताया गया प्रभुपाद को कि प्रभुपाल आपके इस कृष्णा बुक को लेने के लिए इन्होंने भीख मांगी है, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद मिल गया, वो वापस चले गए पहाड़ों में हिमालय में और जाके उन्होंने कृष्णा पुस्तक पढ़ा और कृष्णा बुक पढ़कर वो भक्त बन गए, प्रभुपाद जी के शरण में आ गए और वो बाद में जाने गए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, और इस तरह से वो भक्त बने। प्रभुपाद जी के चरणों को छूने मात्र से ही भक्त बन गए। देखिए ये चरणों की शक्ति है, चरण धूलि की शक्ति है। इस तरह से कई सारी घटना है, एक घटना आपको और बताएं, ये तो एक बार हुआ था, जैसे प्रभुपाद जी व्यास पूजा जब शुरू में हुई लॉस एंजलिस में, तो भक्त लोग नहीं जानते थे व्यास पूजा कैसे बनाई जाए, तो प्रभुपाद व्यास आसन में बैठे और प्रभुपाद ने सॉक्स पहना हुआ था, तो सॉक्स पहना था तो प्रभुपाद जी का सॉक्स उतारे बिना वो दूध डालने लगे, प्रभुपाद ने कहा मेरा सॉक्स तो उतारो, तो सॉक्स उतारा गया, और सॉक्स जब उतारा तो जब दूध डाला तो प्रभुपाद ने अपने चरण उठा के व्यास आसन में रख लिया। अरे ये क्या है, प्रभुपाद ने कहा इट्स सो कोल्ड, एक्चुअली क्या हुआ था, वो फ्रिज में रखा हुआ था धूल, वो सीधा लाके प्रभुपाद जी के चरणों में आके घेरने लगे थे, प्रभुपाद कहते स्टॉप इट, व्हाट इज दिस। तो भक्त लोग शुरू में इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, इतने ट्रेन नहीं थे, उनको पता नहीं था कि ठंडा दूध नहीं डालना चाहिए। तो प्रभुपाल ने रोका उनको, ये हमें बताया था इसलिए बद्रीनारायण महाराज ने, एक्चुअली ये बताया क्यों था, एक बार प्रसादम हॉल में आए थे महाराज, प्रसादम भक्तों के साथ ही लेते हैं हमेशा, तो प्रसाद लेने के लिए बैठे तो महाराज ने कहा मेरा हाथ धुला दो, तो एक भक्त, मैंने कहा जाओ लियाओ जाके अंदर से, वहां जाके पानी लियाओ उसमें बाउल में लियाओ, उसने कहा नहीं प्रभु जी इस फ्लास्क में पानी है, मैंने कहा पक्का है ना सब पानी है, बोलता हाँ हाँ प्रभु जी इसमें पानी है, मैंने कहा पक्का, बोलता हाँ हाँ प्रभु जी 100% पानी है, उसने फ्लास्क खोला और फ्लास्क खोलने के बाद उसने जो है महाराज के हाथ धुलाए प्लेट में, जानते हैं क्या था, वो पानी नहीं था दूध, और दूध से महाराज के हाथ धुलाने लगा। मैंने कहा यार बेड़ा कर करके आप महाराज की डांट पड़ेगी, मुझे ही पड़ेगी, मैं पास में खड़ा हूं, मैंने कहा दूध क्यों डाल दिया, तो मैं देखने लगा, मेरे को लगा आप डांटेंगे, महाराज कहते नो प्रॉब्लम ऐसा होता है। फिर मार ने ये स्टोरी बताई कि हमने भी ऐसे किया था व्यास पूजा में, प्रभुपाद जी के पांव में ठंडा दूध डालने लगे थे। इट्स ओके। फिर जब डाला तो मैंने कहा महाराज अब दे दीजिए, मैं दूध को दूसरी जगह डाल देता, मार कहते व्हाट इज दिस, दिस इज प्रसाद, बोलते यस, देन व्हाई शुड आई वेस्ट इट, वो पूरा पी गए दूध पी गए महाराज। तो ये है, देखिए, तो इस तरह से हम लोग सीखते हैं भगवान गुरुदेव वैष्णव के चरणों की महत्वता, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। केवल भक्ति सदमा का मतलब क्या है, कि गुरुदेव के चरणों में केवल भक्ति है, यानी कि ना ज्ञान का मिश्रण है ना कर्म का मिश्रण है, केवल शुद्ध भक्ति है। गुरुदेव के चरण जो है भक्ति रस से भरे हुए हैं। और क्या होता है, होता क्या है, बंदो मुई सावधाना माते, वंदना करनी पड़ेगी बड़ी सावधानी से। गुरु के चरणों की वंदना बड़ी सावधानी से करनी होगी। क्यों जानते हैं, क्योंकि उनके चरणों की तुलना भी कमल से की गई है। कमल में होता क्या है कि भंवरा जो है आसपास मंडराता है, बहुत नजदीक जाएगा तो क्या होगा जानता है, कई बार कमल का दल बंद हो जाता है और वो भंवरा मर जाता है, और दूर रहने से तो फिर वो मकरंद का बांध नहीं कर पाएगा। समझे कि नहीं समझे, इसलिए बड़ी सावधानी से वंदना करो, ये कह रहे नरोत्तम दास ठाकुर। समझे आज बात को, तो कहने का अर्थ ये है कि वंदना यानी कि चरण कमलों की वंदना का महत्व बताया जा रहा है। और माधुरी कादंबरी में विश्वनाथ जी ठाकुर क्या बता रहे हैं, विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव के प्रति अगर अपराध कर दिया आपने, किसी महाभावत के प्रति अपराध कर दिया, तो महाभावत जो है वो तो अपराध लेते नहीं, वो तो क्षमा ही करते हैं हमेशा, उनके चरण भी क्षमा कर देंगे आपको, लेकिन चरणों की धूली क्षमा नहीं करती है। ऐसे वैष्णव जैसे जो महत होते हैं उनकी चरण धूली हमें क्षमा नहीं करती है। जहां जहां आप चलेंगे और जहां जहां उनकी चरण धूली होगी, वो चरण धूली आपके लिए अंगारों के समान होगी, अगर आपने उन वैष्णव के चरणों में अगर अपराध किया है। चरण धूली आपको चलने नहीं देगी, आपको जहां जहां चरण धूली के अपने पाँव रखोगे आप, वो अंगारे के समान, लपटों के समान लगेगी। इसलिए क्या करना होगा, हमें केवल उनसे माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, उस महाभावत के जो चरणों की धूली है उससे भी माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी चरण धूली जो है वो चढ़ नहीं है, वो चिन्मय वस्तु है, स्पिरिचुअल है, एकदम ट्रांसेंडेंटल है। तो इस प्रकार इसको कहते हैं चरणों का आश्रय लेना। तो बहुत सावधानी से हमें चरणों का आश्रय लेना है। चरणों का आश्रय लेने का मतलब यह भी है कि उनकी शिक्षाओं का पालन करना। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। और गुरुओं के चरणों में अगर रति हो गई तो सारी आशाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। यानी दूसरा अर्थ यह भी है इसका, अगर श्री गुरु के चरणों से आसक्त हो गए तो रति जागृत हो जाएगी, यानी कि भाव जागृत हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इसे यानी कि रति कैसे होगी, रति कैसे होगी गुरुओं के चरणों में, रति कैसे होगी, गुरु मुखा पद्मावा क्या चिते ते कोरिया ए क्या आरो ना कोरी है माने आशा। तो अगर गुरु के मुख से जो वाणी निकली है, उनकी जो आज्ञा निकली है, उसका अनुसरण यथारूप करते हैं तो क्या होगा, चरणों में रति हो जाएगी। तो चरणों में रति होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तब आप चरणों तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो चरणों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे आप। आज्ञा का पालन नहीं होगा तो चरणों से दूर भगा दिया जाएगा हमें। हमें याद है एक व्यक्ति दुबई से आया था, वो महाराज जी का शिष्य था। अब उसने क्या किया, गलती से जो है एक जगह जॉब कर लिया एक रेस्टोरेंट में, और हालांकि वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं था, और उस रेस्टोरेंट का एचआर देखता था, वो एचआर का हेड था, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था दुबई में, और वह एचआर हेड बना उस रेस्टोरेंट का। लेकिन इत्तेफाक से महाराज ने पूछा उससे, महाराज ने पूछा कि आप दुबई में कहाँ जॉब करते हैं, अपने शिष्य से पूछा महाराज ने। उसने कहा महाराज मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। तो फिर आप क्या जॉब करते हैं, उन्होंने कहा मैं अचार देखता हूँ। महाराज ने पूछा उस रेस्टोरेंट में क्या बीफ बेचा जाता है, तो उसने कहा महाराज बीफ तो बेचते हैं। महाराज ने एकदम से पाँव पीछे कर लिए, वो पाँव छूने वाला था महाराज के, महाराज एकदम से पाँव पीछे कर लिए, महाराज का डोंट टच माई फीट। तो यही बात बता रहे थे हम, ये चरणों तक भी हमारी पहुंच नहीं होगी अगर हम क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे, नियमों का पालन करेंगे नहीं, तो क्या होगा, वो चरणों की कृपा भी नहीं मिलती है फिर हम लोग। तो ये ऐसा ना सोचे कि चरण तक अप्रोच करना बड़ा आसान है, नो, गुरु के चरणों तक पहुंचना भी जो है आसान नहीं है। और उस चरण धूली को आपने अगर सब में सामान्य लोगों में बांटना शुरू कर दिया तो सबका पाप लेना पड़ेगा। इसलिए गुरु जो है अपने चरण धूली किसको देते हैं, अपने शिष्यों को देते हैं, जो नियमों का पालन कर रहे हैं, जो समर्पित है, सबको नहीं देते हैं, क्योंकि सब नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं क्या करें, भारतवर्ष है, यहां पर सब लोग चरण ही छूना चाहते हैं, सीधा डाइव लगाते हैं चरण में ही, कोई प्रोग्राम में जाओ तो चरण छूने शुरू हो जाएंगे, चरण चरण छूना शुरू कर देंगे, पांव पकड़ लेंगे, बस आपके स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। जैसे बाबा जी महाराज के पास आया था कोई व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी आया था, उन्होंने कहा बाबा जी महाराज आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, चरणों को छूने की कोशिश कर रहा है। बाबा जी महाराज कहा ठीक है आ जाओ सबको छोड़ के मेरे पास, ये आशीर्वाद। नहीं छोड़ के नहीं आ सकता मैं। तो ये पॉइंट है। तो फिर इस तरह से क्या है, आशीर्वाद मांगते लोग, चरण छूना चाहते हैं। एक बार ट्रेन में भी एक व्यक्ति मिला था प्रभुपाद से, वो बोला कि स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, चरण छूने की कोशिश कर रहा था, उनका आशीर्वाद दे दिए। प्रभुपाद ने कहा यू कैन बिकम लाइक देम, दिस इज माय ब्लेसिंग, इनकी तरह बन जाओ अभी, ये मेरा आशीर्वाद है, आ जाओ। ट्रेन में बोला था प्रभुपाद ने किसी को, दिस इज माय ब्लेसिंग। तो ये भारत में क्या है कि चरणों को छूने की बहुत प्रथा है, लेकिन याद रखिएगा चरण अगर आप छूने दे रहे हैं तो उस व्यक्ति का कर्म लेना पड़ता है, सो इट इज नॉट सो चीप थिंग। तो इस प्रकार ये चरणों की, इसलिए प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को डायरेक्ट बोल दिया। हिरण्यकश्यपु जो है प्रहलाद महाराज के बहुत बड़ा क्रोधित हुआ, प्रहलाद महाराज से पूछा तुमने कहां सीखा ये सब, हमने तो नहीं सिखाया, कहां सीखा, और तुम्हारे विष्णु कहां पर विराजमान है, कहां से मिल रही है तुम्हें शक्ति। तो प्रहलाद महाराज ने कहा जहां से आपको शक्ति मिल रही है वहीं से मुझे भी शक्ति मिल रही है। क्या वो सर्वत्र व्याप्त है? हाँ सर्व जगह व्याप्त है, इस महल में भी है, है इस खंभे में भी है, इस खंभे में भी है। तो क्योंकि हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हो गया था, क्योंकि शंड और अमक ने तो सिखाया नहीं, तो कहां से सीखा ये सब। और प्रहलाद महाराज बहुत सारे श्लोक बोल रहे थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, बहुत सारे श्लोक बोले उन्होंने। मतिर न कृष्ण परतो सतो वा नाते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु। और फिर आखिर में उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई, प्रहलाद महाराज कहते हैं नैषा मतिस्तावत उरु क्रमांग्रिम स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थः मही अशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम नबिनीत यावत। बोलते जब तक वैष्णव की चरण धूली लेकर क्या नहीं कर लेंगे, पूरे अपने शरीर को क्या अभिषेक नहीं कर लेंगे, उससे पूरे शरीर में लगाना होगा चरण धूली को। वैष्णव की चरण धूली लेके क्या करना है, पूरे शरीर में लगाना है। तो क्या होगा अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या है इस संसार से आसक्ति नहीं जाएगी, और जो विषयी लोगों के प्रति आपकी आसक्ति है वो खत्म नहीं होगी। जब तक आप वैष्णव की चरण धूली लेके अपने मस्तक में धारण नहीं कर लेते, अपने शरीर में नहीं लगा लेते, तो इस तरह से शरण लेनी है। शरण लेने का मतलब यह है जैसे हमने बताया कि उनकी आज्ञा का पालन। तो इस तरह से वैष्णव की चरण धूली का भी उतना ही महत्व है जितने की भगवान के चरणों का महत्व है। और अब यह बताया, अब यह आखिरी प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि कौन योग्य है, कौन क्वालिफाइड है भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए, किसके पास योग्यता है और क्या योग्यता है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन बड़ा सुंदर बताया श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी कह रही है। कुंती महारानी कहती हैं, बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, और श्लोक में बताया गया है श्रृणवंती गायंती गृणंती अभिक्षणशः। बहुत सुंदर श्लोक, श्रृणवंती गायंती गृणंती अभिक्षणशः स्मरंती नंदंती तवे हितम जनः तएव पश्यति पश्यन्ति अचरेण तावकम् भवा प्रभोह परमं पदाम्बुजम्। यानी कि जो निरंतर श्रवण करते हैं, योग्यता क्या है इसकी, भगवान के चरणों का आश्रय कैसे मिलेगा आपको, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, गुणगान करने से, घृणंती, और दूसरे अगर करते हैं तो उनको देखकर भी अगर आपको आनंद आता है ऐसा करने से, तो क्या होगा, ऐसे भक्त जो है जो भगवान का निरंतर गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके बारे में श्रवण करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कहेंगे भगवान के चरणों का आश्रय ले पाएंगे। और चरणों का आश्रय लेंगे तो क्या होगा, आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा प्राप्त होगा। इसे प्रभुपाद कहते हैं कि हेयरिंग प्रोसेस इज परफेक्ट एंड कंप्लीट। जब हेयरिंग प्रोसेस आपका पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो अदर प्रोसेस बिकम ऑटोमेटिकली परफेक्ट इन देयर ओन वे। तो बाकी जितने भी प्रोसेस है वो अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं, केवल सुनने मात्र से, सुनना, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है ध्यान से। इसलिए भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के चरणों के बारे में सुनेंगे, भगवान के सुंदर रूप के बारे में सुनेंगे, तो क्या होगा, भगवान से आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए भागवत का जो प्रथम स्कंद है, भागवत का द्वितीय स्कंद है, उसकी तुलना भगवान के चरणों से की गई। भगवान इसलिए, और उसके बाद फिर भगवान के जो जांग है, थाईज है, उसकी तुलना भागवत के तृतीय स्कंद और चौथे स्कंद से की गई है। भगवान के उदर की तुलना भागवत के पांचवें स्कंद से की गई है। भगवान के वक्ष स्थल की तुलना भगवान भागवत के छठे स्कंद से की गई है। और सातवां और आठवां भगवान की भुजाएं हैं। भगवान का कंठ, उसकी तुलना किससे की गई है? नौवें स्कंद से की गई है। और भगवान का जो मुख है, उसकी तुलना भागवत के दसवें स्कंद से की गई है। और भगवान का मस्तक भागवत के ग्यारहवें स्कंद से की गई है। और भगवान का मुकुट, उसकी तुलना भागवत के बारहवें स्कंद से की गई है। तो भगवान के चरणों से हम लोग दर्शन शुरू करें। और एक बहुत सुंदर बात बताई गई है श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि यहां पर लिखा गया कि कैसे हम लोग ध्यान लगाएं भगवान के चरणों के ऊपर, कैसे ध्यान लगाएं, ये प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या है? हाउ टू मेडिटेट अपॉन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो इसकी भी बहुत सुंदर वर्णन किया, व्याख्या की गई भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 13 में। क्या बताया गया है? द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन शुड बिगिन फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरणों से हमें भगवान का ध्यान लगाना शुरू करना चाहिए। और उसके बाद प्रोग्रेस टू स्माइलिंग फेस, धीरे धीरे भगवान के मुख तक पहुंचना चाहिए। अब प्रश्न पूछेंगे आप, क्या पूछेंगे कि प्रभु हम दंडवत करके उठते हैं तो सीधा हमारा सीधी आंख हमारी भगवान के मुख में पड़ती है, हम तो चरणों तक देखते ही नहीं, सीधा ऊपर पहुंच जाते। कोई दिक्कत नहीं, वो आपके लिए स्पॉन्टेनियस, उसको रोकिएगा मत, वो स्वाभाविक है आपके लिए। और उसके बाद फिर से चरणों से शुरू करिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? दंडवत करके जैसे ही उठे तो राधिका रमण का चेहरा नजर आने लगा, शास्त्र तो कुछ और कह रहा है। नहीं, वो आपके लिए नेचुरल है, वो नेचुरल अट्रैक्शन है आपका, उसको रोके नहीं, उसको कब मत करिए। फिर क्या करें आप? फिर आप चरणों से दर्शन करना शुरू करें। इस तरह से प्रोसेस बताया गया है, मेडिटेशन शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन द लोटस फीट, चरणों के ऊपर ध्यान लगा के, उसके बाद जांघ के ऊपर, काफ्स के ऊपर, फिर थाइस के ऊपर, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएं। और इस तरह से जितना अधिक हम ध्यान लगाते जाएंगे, जितना अधिक अपने मन को लगाएंगे, भगवान के अलग अलग अंगों में लगाएंगे, तो जानते क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, हमारी चेतना शुद्ध होगी। तो इस तरह से भगवान का स्वरूप, भगवान का दर्शन करना, इससे क्या होता है, हमारे हृदय में करोड़ों जन्मों का जो निर्विशेषवाद है और जो मायावाद है वो खत्म होता है भगवान के चरणों का दर्शन करने से। निर्विशेषवादी मायावादी रहे हम लोग बचपन से ही, ये पूरा देश मायावादियों से भरा हुआ है, इसलिए ये बातें उनको समझ में नहीं आएंगी कि भगवान के स्वरूप को इतने ज्यादा जो है फोकस करके, इतना ध्यान लगा के सुनना है, देखना है, नहीं, वो नहीं समझ पाते इस बात को। इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप भगवान का दर्शन कर पाते हैं, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद। इसलिए पूरे विश्व भर में क्या किया, इतने सारे मंदिर बनाए, इतने सारे विग्रह स्थापित किए, ताकि मंदिर जाके भगवान का दर्शन कर सकें, उनके विग्रह का दर्शन कर सकें। और इस दर्शन करने के बाद क्या होगा, और कुछ दर्शन करने की हमारे हृदय में अभिलाषा ना हो इस दर्शन को करने के बाद। इसलिए हमें क्या करना, रोज हमें प्रातःकाल उठ के सबसे पहले दर्शन किसका करना चाहिए? भगवान का। आप जानते हैं अंधेरा क्यों किया जाता है, मंगल आरती में अंधेरा क्यों किया जाता है? एक फेस्टिवल है साउथ में, नए साल में मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में वहां पर नया साल मनाया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, साउथ इंडिया में उनके कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल में पड़ता है नया साल, इंग्लिश कैलेंडर तो जनवरी पड़ता है, और गौराब के हिसाब से, गौड़िया वैश्विक कैलेंडर के हिसाब से हम लोग मार्च फरवरी मार्च में मनाते हैं, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल या मार्च के करीब होता है वो भी। तो वहां उसमें क्या करते हैं, उस फेस्टिवल में आप जैसे ही उठेंगे ना, आपको उठाया जाएगा, बच्चों को उठाया जाता है, उठाते बोलेंगे कि आप आंखें बंद करके रहो, उठो तो आंखें मत खोलो। तो फेस्टिवल में क्या करना होता है, उस नए साल में क्या करेंगे, जैसी आंख खोलेंगे सबसे पहले भगवान का दर्शन करना होगा, और वहां सिक्के रखे होंगे, वो सिक्के उठा के जो है आपको भगवान के चरणों में अर्पित करने होते हैं। तो हमने ये बचपन में बहुत किया है, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो उसमें क्या करते हैं, सुबह सुबह उठेंगे और अंधेरा होगा चारों तरफ, अगर हम लोग लेट भी उठ गए तो अंधेरा कर दिया जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से जल्दी उठा दिया जाता है उस दिन। तो 5 बजे करीब जब सनराइज नहीं होता है, उससे भी पहले उठने के बाद पूरा अंधेरा करके, कोई लाइट वाइट नहीं जलती है, और उसके बाद जैसे ही आपको भगवान के सामने बिठाया जाएगा तब लाइट ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आपने किसका दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया। यही अभिप्राय है, यही पर्पस है मंगल आरती में अंधेरा करने का, समझ गए आप, कि हम लोग सबसे पहले किसका दर्शन करेंगे, सुबह सुबह मंगला दर्शन करेंगे। सबसे पहले हम अपने को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम ठाकुर जी को देखेंगे। अपने को तैयार केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि सब भगवान के सामने खड़े होने लायक तो हों कम से कम, इसलिए वैष्णव तिलक लगाते, वैश्य तिलक लगाने का मतलब है हम खड़े होने लायक बन रहे हैं, ठाकुर जी के सामने खड़े होने लायक तो बने, कोई चोर तो नहीं आ गए मुझे देखने के लिए सुबह सुबह, तो वैश्य तिलक लगाए देखेंगे भगवान, हाँ हाँ ठीक है हमारे भक्त आए या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है कर लो दर्शन। तो अंधेरा जब होगा वैश्य तिलक देखेंगे और आप भगवान को देखेंगे, बस पहला दर्शन हम करेंगे राधिका रमन जी का करेंगे। जैसे जयपुर में देखिए, जयपुर में आज भी प्रथा है, वहां के जितने व्यापारी हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के राधा गोविंद जी का दर्शन करते हैं। इतना सुंदर वातावरण वहां पर, ऐसा लगता है ब्रज ही प्रकट हो गया, बड़ा आनंद आता है वहां पे। खड़े हो जाए, कोई कोई प्रचारक नहीं है, राधा गोविंद जी प्रचार कर रहे हैं वहां पे, वहां पे राधा गोविंद जी के सामने खड़े होके बस गोविंद जी का दर्शन करो। सब लोग बड़े भाव से श्रद्धा से गा रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग दुकान कब खोलेंगे, सबसे पहले गोविंद जी का दर्शन करेंगे उसके बाद। तो ये आपका भी होना चाहिए पर्पस। अगर आप दूर रहते हैं तो घर पे करिए, और दूर नहीं रहते हैं तो पास में आके करिए। भगवान का दर्शन किए बगैर आप कोई कार्य शुरू नहीं करेंगे दिन में, ये प्रण ले लीजिए। उठूंगा तो सबसे पहले मैं भगवान का दर्शन करूंगा, बाकी सारे काम बाद में, पत्नी का, बच्चों का, घर वालों का, परिवार वालों का दर्शन बाद में करूंगा मैं, रिश्तेदारों का, बिजनेसमैन का, कस्टमर्स का दर्शन बाद में करूंगा। सबसे पहले दर्शन किसका करूंगा, ठाकुर जी का करूंगा, राधिका रमन जी का करूंगा, और के चरणों का दर्शन सबसे पहले करूंगा, उसके बाद फिर देखिए आपका दिन कितना अच्छा हो जाता। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, कोई प्रश्न? सब लोग संतुष्ट हैं भगवान का दर्शन करके, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।